भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। गुरुकुल के बच्चे यहाँ आ जाइए, थोड़ा आगे इस साइड में है ना, और पास पास में भी बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्या इधर ले रहे भी? हाँ हरे कृष्णा। आज कौन कौन से हमारे वैष्णवाचार्यों का आविर्भाव है या तिरुभाव है, इसको एक एक करके भी बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए। आज के दिन कौन से हमारे वैष्णवाचार्य जो हैं उनका आविर्भाव तिथि है या तिरुभाव तिथि है? नहीं, ठीक है, चलो मैं ही बताता हूं। तो हमारा आज वसंत पंचमी के दिन सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का विवाह जिनसे हुआ, श्रीमती विष्णुप्रिया देवी जो लक्ष्मी से भिन्न है, उनका आज आविर्भाव दिवस है, विष्णुप्रिया देवी का। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी का आज के दिन आविर्भाव दिवस है। फिर रघुनंदन ठाकुर, मैं सबके बारे संक्षेप में बताऊंगा, रघुनंदन ठाकुर उनका आविर्भाव दिवस है। फिर पुंडरिक विद्यानिधि, एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनका आविर्भाव दिवस है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिनकी समाधि देखे, जो जूस गादी सबसे ज्यादा सजाई गई है ना उधर सामने, उनका आज तिरुभाव दिवस है। तो पांच महत्वपूर्ण तिथि एक साथ में आई है, जैसे हमारा हाथ में पांच उंगलियां है ना, पांच उंगलियां एक साथ मिलके बहुत उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है ना, एकदम पांच उंगली एक साथ जब कार्य करते हैं तो हम कुछ भी कार्य संपन्न कर पाते हैं। पांच उंगलियों में एक समूह सामूहिक शक्ति है ना, ऐसे आज पांच वैष्णवाचार्य का आविर्भाव तिरुभाव है। तो आज के दिन बहुत विशेष शक्तिशाली दिन है। या हम जैसे हाथ में आशीर्वाद होता है ना, तो पूर्ण आशीर्वाद, जैसे पांच उंगलियां खड़ी की है ना, कोई आशीर्वाद देता है ऐसा करके, तो आज पांच पांच वैष्णवाचार्य का आशीर्वाद है आज के दिन। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, संक्षेप में हम उनके चर्चा करेंगे। एक चैतन्य चितामृत का श्लोक का उच्चारण करेंगे, मेरे पीछे बोलिए क्या, जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान। मैं इसका अर्थ बताता हूं, फिर दोबारा उच्चारण करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जयो गौर भक्त गण, महाप्रभु गौर, चैतन्य महाप्रभु गौर कहते हैं ना, और कृष्ण को श्याम, श्याम वर्ण है, चैतन्य महाप्रभु का गौर वर्ण है। तो कहते हैं जय गौर भक्त गण, सभी चैतन्य महाप्रभु के, गौरंग महाप्रभु के भक्तों की जय कर रहे हैं, जितने भी महाप्रभु के भक्त हैं उनकी सबकी जय जयकार दे रहे हैं। क्योंकि गौर यार प्राण, उन सबके प्राण धन है महाप्रभु, गौर यार प्राण। और कहते हैं कि सब भक्त मिली, सभी भक्तों से याचना कर रहे हैं, जितने भी गौरंग महाप्रभु के भक्त हैं उनसे याचना कर रहे हैं कि आप सब मिलके मुझे भक्ति दीजिए भगवान की। तो सबसे बहुमूल्य वस्तु है संसार में शुद्ध भक्ति, तो उसकी याचना कर रहे हैं। और भक्ति कौन दे सकता है हमें, जो भक्त हैं, जिनके पास भक्ति है, जो महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं उनके पास भक्ति है, वो हमें ये बहुमूल्य संपद दे सकते हैं। तो उनसे याचना की जाए तो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हमें ये बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तो जय गौर भक्तगण गौर यार प्राण, सभी महाप्रभु के भक्तों की जय हो, इनके प्राण धन चैतन्य महाप्रभु हैं, और सब भक्त मिलके मुझे भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान, दान मतलब याचना कर रहे हैं। तो उच्चारण कीजिए दोबारा मेरे पीछे, जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान। जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान। कौन उच्चारण करेंगे, हाथ खड़ा कीजिए, कोई कंठस्थ हो गया हो। पहले मैं सोच रहा हूँ, हाँ गुरुकुल के बच्चे से स्टार्ट करेंगे, बच्चे या बच्चियां कोई भी बताइए कौन। हाँ हरि बोल, बोलिए। अच्छा मैंने बोला जिसको कंठस्थ हो गया हो। ठीक है, देख के बोलिए, ऊंचा ऊंचे स्वर में बोलिए, हम आपके पीछे बोलेंगे ऊंचे स्वर में। जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण,
सब भक्त मिली मोर भक्ति देह दान,
सब भक्त मिली मोरे भक्ति देह दान। हरि बोल। अच्छा अभी जिनको कंठस्थ हो गया वो उच्चारण करेंगे, पहले बच्चों को फर्स्ट ऑप्शन, फिर बड़े लोग कर सकते हैं इसको। जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहु। इनके लिए ऊंचे स्वर से हरि बोल बोलेंगे, ये एकदम निकट बैठे हैं विष्णु जी ठाकुर की समाधि के, इनको विशेष कृपा मिल गई है। हाँ और अभी गुरुकुल के और कौन बच्चे रिसाइट करेंगे, बच्चियों में से कोई हाथ खड़ा करेंगे तो। हाँ कौन बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ चलो शिवम एक्स गुरुकुल। जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान। हाँ प्रभु आप कीजिए उच्चारण, मैंने दो तीन बार हाथ खड़ा किया। जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान। कोई भी इनकी इच्छा उच्चारण करने की, जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान। और भी कुछ उच्चारण करने की इच्छा हो, जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान। उस तरफ से दीवार के उस परे से कोई आवाज नहीं आई अभी तक। कोई बात निकाल दो। जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देह दान। और कोई बच्चों की छोटे बच्चों की बड़े बच्चों की इच्छा हो, नहीं नहीं याद हुआ अभी तक? हाँ हरि बोल। जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान। और किसी की इच्छा हो, कंठस्थ हो गया हो? हाँ बोलिए।
जय गौर भक्त गण, जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण,
जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण,
सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान,
सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो एक साथ बोलेंगे सब लोग, जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान। तो इस श्लोक में कविराज गोस्वामी सभी भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब भक्त मिलके मुझे भक्ति दान दीजिए। वास्तव में भक्तों के समाज में हमें चाहिए कि जितने ज़्यादा भक्त हम पे कृपा करें उतना हमारा जो है हम उतना धनी हो जाएंगे। इस संसार में वास्तव में तीन प्रकार के धन हैं, जो बहुमूल्य धन है। एक है भगवान के नाम का धन। तो जो व्यक्ति जितना भगवान का नाम जप करता है उसके गोलों को बैंक में बढ़ता जाता है, ऐड होता रहता है। पासबुक होता है ना, जैसे लोग अपने बैंक में धन जमा करते हैं, ऐसे नाम का धन है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति लखपति है। लखपति मतलब जो भगवान का नाम 1,00,000 बार रोज जप करे, मतलब 64 माला जप। हम इस कौन में 16 माला करते हैं ना, तो यदि रोज 64 माला की जाए तो वो व्यक्ति को लखपति कहा जा सकता है, डेली नित्य। तो भगवान के नाम का जो है वो धन है, और जो सेवा करते हैं हम वो भी एक धन है, सेवा का धन। और सभी तीसरा धन है कृपा का धन, जैसे वैष्णव की कृपा हो जाए। तो भक्तों के समाज में हमें ये तीन प्रकार के धन को एकत्रित करते रहना है। ये हमारा परमानेंट धन है, ये कभी इसका क्षय नहीं होगा। इस संसार का हम कितना भी धन एकत्रित करेगा कोई भी, लेकिन अंत में सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो नाम का धन है, जितना हमने नाम लिया वो हमारा धन हमेशा हमारे साथ में रहेगा। नाम का धन, सेवा का धन और कृपा का धन। तो सभी भक्तों की कृपा का धन के लिए कर रहे हैं। तो जब हम भक्तों को प्रसन्न करते हैं अपनी नम्रता से, अपनी सेवा से, तो भक्त लोग की कृपा होती है, वो कृपा हमारा धन बन जाता है। तो आज का दिन जो है वो, ये हम बहुत धन कमा सकते हैं आज के दिन। 5-5 वैष्णव, जो महान वैष्णव या वैष्णवी हैं, उनका आज के दिन आविर्भाव या तिरुभाव दिवस है। तो हम उनकी कृपा की याचना करना चाहते हैं आज, उनकी कृपा का धन हमारे जीवन में मिल जाए। तो सबसे पहले आज जो है मैं श्रीमती विष्णु प्रिया देवी, उनसे शुरू करूँगा। 5-5 मिनट ही बता पाऊंगा सबके बारे, बहुत संक्षेप में। तो चैतन्य महाप्रभु, उनका प्रथम विवाह जब वो नवद्वीप में थे, गृहस्थ आश्रम में थे, तो प्रथम विवाह उनका लक्ष्मी देवी से हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जब बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश नवद्वीप से बांग्लादेश गए थे, तो बांग्लादेश के टूर पे गए थे, तो पीछे से लक्ष्मी देवी जो है उनके विरह में उनका देहांत हो गया, विरह नहीं सहन कर पाई। तो दोबारा चैतन्य महाप्रभु का बाद में वापस लौट के आ गए, तो दोबारा उनका विवाह हुआ था विष्णु प्रिया देवी से। तो विष्णु प्रिया देवी बताया गया है जो भगवान की द्वारका लीला में सत्यभामा है, भगवान की रानी है सत्यभामा। एक सत्यभामा जो है उनका ही एक अंश है विष्णुप्रिया, उनका ही दूसरा रूप है विष्णुप्रिया के रूप में। और जो हमारी भूमि देवी है, इसको अर्थ बोलते हैं ना, अर्थ वास्तव में देवी है। भूमि से अन्न उत्पन्न होता है, हमारा शरीर जो है उसका पोषण होता है, तो धरती को भी माँ कहा गया है, है ना। जैसे हमारे वैदिक श्लोकों में, वैदिक सभ्यता में बताया गया हमारी सात प्रकार की माता है, तो जैसे गौ माता एक है, ऐसा धरती माँ बोलते हैं ना, धरती माँ। तो पृथ्वी भी एक माता के रूप में है। तो सत्यभामा जो है भगवान की रानी, उनके ही एक अंश जो है वो भूदेवी है। सत्यभामा से ही भूदेवी पृथ्वी देवी एक्सपेंड हुई है, और उनके ही सत्यभामा का ही एक दूसरा स्वरूप है विष्णुप्रिया देवी, भगवान की जो रानी है। तो विष्णुप्रिया देवी, जिनका चैतन्य महाप्रभु ने दूसरी बार जिनसे विवाह हुआ था, वो सत्यभामा भगवान कृष्ण लीला में। तो चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में बहुत ही थोड़े समय रहे, और उन्होंने 24 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो फिर विष्णुप्रिया देवी जो है वो भगवान के विरह में वो प्रतिदिन जो है वो भगवान का नाम जप करती थी। तो एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे वंशी वदन, तो जो वंशी वदन थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के एक सुंदर विग्रह जो थे विष्णुप्रिया को दिए थे। तो वो उनकी विग्रह की पूजा करती थी विष्णुप्रिया देवी, और सुबह प्रातः काल में 3 बजे उठ करके गंगा स्नान को जाती थी। गंगा स्नान करके 3:30 बजे जप शुरू करती थी, और उनके सामने मिट्टी का हंडी होता ना, मिट्टी का एक बर्तन बाउल, उसमें चावल के दाने रखे रहते थे। वो एक चावल के दाने को उठाती थी और एक महामंत्र जप करती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मिट्टी की हंडी से एक चावल का दाना लेके पूरे हृदय से पुकार के भगवान का नाम, और अपने मंदिर में बैठ के जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का विग्रह था, चावल के दाने के ऊपर महामंत्र का जप करके वो दाने को दूसरे खाली मिट्टी के बर्तन में रख देते थे। ऐसा सुबह से शाम तक, सुबह 3:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक जप करते थे 12 घंटा एक एक चावल के दाने पे। और जितना भी चावल का दाना होता था उनको, कितना होगा आप सोचिए चावल का दाना, अगर आप 16 माला जप करेंगे ऐसा तो 4-5 चम्मच निकलेगा एक जना, है ना, तो उसको क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, और क्या भूख मिटेगा वास्तव में। तो जब करती थी चावल का दाना, वो छोटा छोटा होता है ना एक दाना, तो इतना चावल का दाना हो जाता मुट्ठी मर 1-1.5 मुट्ठी, उनको उबाल के चैतन्य महाप्रभु को भोग लगा के उतना ही ग्रहण करती थी विष्णुप्रिया देवी। जिस चावल के दाने भी उन्होंने महाप्रभु के चरण कमल को ध्यान में रखते हुए पूरे भक्ति भाव से जो महामंत्र जप किया है, तो एक एक दाने में उनके हृदय की भक्ति थी ना। यदि हमको एक दाना भी खाने को मिल जाए जिस पे विष्णुप्रिया देवी ने जप किया है, तो हमारा हृदय जो है पूर्ण रूप से भक्ति से भर जाएगा। तो 1-2 मुट्ठी चावल का दाना उनको पका करके महाप्रभु को भोग लगा करके रात में ग्रहण करती थी विष्णुप्रिया देवी। तो इस तरह से उन्होंने अपना जीवन, भक्तिमय जीवन निर्वाह किया। और कहा गया है बड़े बड़े जो आचार्य थे, वैष्णव थे, सन्यासी थे, उनके दर्शन करने आते थे, उनका आशीर्वाद लेने आते थे। जीव गोस्वामी ने षड् संदर्भ लिखे हैं, सबसे बड़े विद्वान हुए हैं, वो आके उनके आशीर्वाद याचना करते थे। श्रीनिवासाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, जिन्होंने षड् गोस्वामी अष्टकम की रचना की है और बहुत विस्तृत रूप से प्रचार किया है। तो वो भी जो है आकर के विष्णुप्रिया देवी के दर्शन के लिए आए, उनका आशीर्वाद की याचना की। तो इस तरह से विष्णुप्रिया देवी भगवान की अंतरंग शक्ति है, और आज के दिन हम भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें मिले, हमारे हृदय में भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो। दूसरे जो महाप्रभु के पार्षद है जिनका आज आविर्भाव दिवस है वो है पुंडरिक विद्यानिधि। आपने सुना है नाम पुंडरिक विद्यानिधि का? नहीं नहीं, गुरुकुल के बच्चों ने नहीं सुना। पुंडरिक विद्यानिधि जो थे चैतन्य महाप्रभु, एक बार शिवास ठाकुर के घर पे, पंचतत्व में एक शिवास ठाकुर है ना, तो कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन के बीच में एकाएक वो बोलने लगे, पुंडरिक मेरे पिता, पुंडरिक आप कहाँ हैं, आप कब आएंगे? तो सब भक्त लोग अचंभित हो गए, अरे ये एकाएक महाप्रभु किसको पुकारने लगे, पुंडरिक प्रेम निधि, उनका दूसरा नाम था प्रेम निधि। प्रेम का अर्थ भगवान के प्रति प्रेम, निधि का अर्थ है जो सागर है, प्रेम के सागर। तो मेरे पिताजी, तो महाप्रभु उनको अपने पिता के रूप में मानते थे, उनको स्मरण करके कह रहे थे आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। तो मेरे पीछे एक श्लोक का उच्चारण कीजिए जो कविराज गोस्वामी उनकी स्तुति करते हैं पुंडरिक विद्यानिधि की, ये हम कंठस्थ नहीं करेंगे पर सिर्फ उच्चारण करेंगे। पुंडरिक विद्यानिधि बड़ शाखा जानी, यार नाम लिया प्रभु कांदिला अपनी। पुंडरिक विद्यानिधि बड़ा शाखा जानी, तो महाप्रभु को एक वृक्ष के रूप से तुलना की गई है, और जितने भी महाप्रभु के भक्त हैं उनका तुलना की गई है शाखा से। तो कहते हैं महाप्रभु के जो महाप्रभु वृक्ष हैं उनकी एक बहुत बड़ी शाखा है पुंडरिक विद्यानिधि, बड़ा शाखा जानी। और महाप्रभु जब उनका नाम लिए तो महाप्रभु आंखों में आंसू आ गए, यार नाम लिया प्रभु कांदिला अपनी, कांदिला का अर्थ है उनके आंखों में आंसू आ गए। क्यों? अपने भक्त की महिमा का स्मरण करके महाप्रभु के आंखों में अश्रु आ गए। इतने महान भक्त हैं कि महाप्रभु रोने लगे उनका स्मरण करते हुए, और जोर जोर से पुकार रहे थे, मेरे पिता पुंडरिक विद्यानिधि आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। तो पुंडरिक विद्यानिधि कौन है? वृषभानु महाराज, राधा रानी के पिताजी है ना, राधा रानी का नाम है वृषभानु दुलारी। तो वृषभानु महाराज जो है कृष्ण लीला में वो पुंडरिक विद्यानिधि के रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु लीला में। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण कंबाइन है ना, तो इसलिए अपने पिता को याद कर रहे थे। तो राधा रानी और कृष्ण दोनों के पिता जो है महाप्रभु, दोनों को अपना पिता कहेंगे ना, कंबाइन है। तो नंद महाराज भी उनके पिता है चैतन्य महाप्रभु के, और विष्णु महाराज भी उनके पिता है, तो इसलिए अपने पिता का राधा रानी के भाव में अपने पिता का स्मरण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु पुंडरिक विद्यानिधि। तो उनके जैसे मैंने बताया, उनका पुंडरिक विद्यानिधि का एक और नाम है प्रेम निधि। प्रेम निधि का अर्थ है जो प्रेम के सागर हो, निधि का अर्थ है सागर। तो पुंडरिक विद्यानिधि जब कहा गया है वो भी जब नवद्वीप आए, नवद्वीप के बाहर चैतन्य भागवत में कथा आती है आकर के रुके, और तभी गदाधर पंडित जो पंचतत्व में से एक हैं, तो मुकुंद दास महाप्रभु के एक भक्त थे, मुकुंद बहुत सुंदर गाते थे, वो गदाधर पंडित उनसे मिलने के लिए लेके गए। लेकिन पुंडरिक विद्यानिधि जो है एकदम राजा की तरह राजवेश में थे, उनके बहुत से नौकर चाकर थे, और उनको बहुत जो है ऐश्वर्य था। वो देख करके वो चकित हो गए कि ये कौन वैष्णव हैं, पहचान नहीं पाए। फिर उन्होंने एक श्लोक गाया मुकुंद दास ने, ओ बकियम स्तन काल कूटम, तो बहुत सुंदर श्लोक है भागवत का, जहाँ पे भगवान कृष्ण की कृपा के बारे बताया गया है कि किस तरह से भगवान ने पूतना पे कृपा की। ओहो बकियम स्तन काल कूटम, जिगम शया पाय दप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्र्युच्युताम तुतन्यम, कं वा दयालु शरणं व्रजेम। तो कम वा दयालु, ऐसे कौन दयालु हैं भगवान कृष्ण के समान जिन्होंने इस राक्षसी को भी अपने धात्री जो है उसको जो माँ होती है एक जो माँ की सहायता करती है बच्चे को पालन पोषण करने में उसको धात्री कहते हैं। आई बोलते हैं कुछ तो धात्री महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं दाई तो उनको पुतना जो राक्षसी थी उनको दाई की पदवी दे दी भगवान ने आध्यात्मिक जगत में। कम वा दयालु, उनसे दयालु और कौन अधिक है। तो ये बात जब पुंडरीक विद्या ने सुनी ये श्लोक भागवत का सुना तो उनके हृदय में इस तरह से भक्ति की लहर उठी कि उनके आंखों से अश्रु बहने लगे और उनके जो उन्होंने इतना चारों तरफ जो उनके समान वान पड़ा था उन्होंने पूरा बिखार दिया, मतलब वो अनकंट्रोल हो गए। उनको ऐसा उनके आजू बाजू बड़े बड़े कलश पड़े थे पानी के भरे हुए, सिल्क की जो है चादर थी उनके बेड पे उन्होंने उठा के फेंक दी। बोले इतना उनका जो है हृदय में वो भाव की भक्ति की इतना ये आ गया कि वो कंट्रोल नहीं हो पाया उनका और उन्हें सब चीज जो है इधर उधर तहस नहस हो गई वो। तो ये देख करके और फिर बाद में वो अचेतन होकर गिर पड़े। तो ये देखा जब उनका ये भक्ति का भाव देखा, वैसे ऐसा नहीं कि भक्ति का भाव मतलब सब चीज़ें इधर तोड़ फोड़ कर दो, उसका अर्थ ये नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार का भाव है कि बहुत अधिक जब भक्ति का भाव हृदय में उनके जब आ गया तो वो एकदम अनकंट्रोलेबल एक्सटेसी हो गया। जैसे भक्त लोग कभी कभी नाचते हैं ना कीर्तन में ऐसा घूम 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 के तो दो चार लोग को हाथ पैर मार देते हैं, ऐसा देखा गया है ना। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए भक्ति का भाव, तो इसी तरह से उन्होंने आसपास थोड़ा तहस नहस हो गया वो जेन्युइन उनका वो ऐसा भक्ति का भाव था, ऐसा जानबूझ के नहीं किया। तो इस तरह से जब वो देखा उनका भक्ति का भाव तो गदाधर पंडित तुरंत वो पहचान गए कि बहुत महान भक्त हैं ये, इनकी भक्ति अतुल्य है। तो ये कथा भी पुंडरीक विद्यानिधि की बताई गई है। और एक बार पुंडरीक विद्यानिधि को जगन्नाथ जी ने सपने में आकर के झापड़ मारे थे। अरे भगवान का झापड़ भी किसी को पड़ जाए कितनी बड़ी कृपा है ना। तो वो भी एक कथा है कि पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा अरे जगन्नाथ जी के सेवक जो है ठीक से सेवा नहीं कर रहे, इन्होंने ये जो है अपवित्र वस्त्र जगन्नाथ जी को भेंट कर दिया है, ऐसे वो सोचने लगे। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि जो भी मेरे भक्त दे रहे हैं मुझे स्वीकार है, आप क्यों टिप्पणी कर रहे हैं दोषारोपण कर रहे हैं। तो उनको झापड़ मारा लेफ्ट राइट, सुबह उनकी गाल फूल गई थी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने आके देखा, उन्होंने कहा कि भगवान ने भक्तों पे बहुत प्रकार से कृपा की है, इस प्रकार की कृपा किसी भक्त पे नहीं की कि अपने उंगली के निशान छोड़ दिए, जगन्नाथ का हैंड प्रिंट है ना उनकी गालों के ऊपर, उन्होंने इस प्रकार की कृपा किसी भक्त पे नहीं की है, आप महान भक्त हैं, है ना। भगवान अगर किसी को स्वयं आकर के अपने गालों पे उनके भगवान का बिल्कुल हाथ का निशान छप गया उनके गालों पे, बहुत बड़ी कृपा है ना। थोड़े दर्द तो हुआ उनको लेकिन फिर भी बहुत महान कृपा जगन्नाथ जी की। तो ये भी पुंडरीक विद्यानिधि को कृपा प्राप्त हुई जगन्नाथपुरी में जैसे। तो इस तरह से पुंडरीक विद्यानिधि बड़ा शाखा जानी महाप्रभु के बड़े भक्त हैं, उनका नाम स्मरण करके महाप्रभु स्वयं हृदय से उनका भाव ये हो गए, महाप्रभु भाव भावित हो गए और उनकी आंखों में अश्रु आ गए थे। तो हमने विष्णुप्रिया देवी के बारे चर्चा किया पुंडरीक विद्यानिधि, और जो महाप्रभु के भक्त हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके बारे कविराज गोस्वामी कहते हैं, मेरे पीछे श्लोक का उच्चारण कीजिएगा। महाप्रभु रा प्रिया भृत्या रघुनाथ दास सर्व त्यजी कैला प्रभुरा पद तले वास। महाप्रभु रा प्रिय भृत्या, बहुत जो प्रिय भृत्य हैं, भृत्य का अर्थ है सेवक, वो है रघुनाथ दास। सर्व त्यजी, त्यजी का अर्थ है त्याग कर दिया, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। सर्व त्यजी कैला प्रभुरा पद तले वास, और महाप्रभु के चरण कमल में वास किया, सब कुछ छोड़ के, सब चीज का त्याग करके। महाप्रभुरा प्रिया भृत्या रघुनाथ दास, सर्व त्यजी कैला प्रभुरा पद तले वास। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है महाप्रभु बहुत प्रिय भृत्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और उन्होंने सब कुछ त्याग करके महाप्रभु के चरण कमल का आश्रय लिया। तो बताया गया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी का नाम था गोवर्धन मजुमदार, बहुत बड़े जमींदार थे, राजा के समान थे प्रायः एक तरीके से। उनका उनके पिताजी जो है 12 लाख उस समय, इसे हम 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं, सिक्के नहीं, सोने के सिक्के 12 लाख उनका इनकम था उस समय की बात कर रहे हैं। आप देखो, आप सोच भी नहीं सकते, आज के जमाने में भी अगर इसी को 12 लाख सोने के सिक्के मिले इसके सैलरी में, तो कितनी सैलरी होगी? आज के जमाने में बहुत बड़ी उसकी कीमत है, और हम 500 साल पहले की बात कर रहे हैं। उतनी उनकी जो है महीने की इनकम थी उनके पिता की। तो चैतन्य महापुरुष स्वयं कहे हैं कि इनके पिताजी जो है वो इंद्र देवता से कम नहीं है ऐश्वर्य में, वास्तव में जैसे इंद्र का ऐश्वर्य है। और उनकी शादी हुई थी और वो उनके जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, अप्सरा के समान। तो इनका इंद्र के समान धन है, इनकी अप्सरा के समान धर्म पत्नी है, लेकिन फिर भी इन्होंने सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के चरण कमल का आश्रय लिया, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इसलिए कविराज गोस्वामी उनकी स्तुति करते हैं। तो महाप्रभु ने जब वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ लिया अपने हाथ में, और महाप्रभु के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो निजी सबसे निजी पार्षद थे, उनका नाम था स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ लेके स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में दे दिया कि मैं आपको इनके अंडर में, आप इनके अंडर में रहकर सेवा कीजिए, इनके मेरे भक्त का शरण देता हूँ। वास्तव में भगवान का शरण उनके भक्तों के शरण से ही मिलता है हमें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंडर में, उनके शरण में सेवा करने को दिया। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से वो सुनते थे महाप्रभु की कथा, और फिर कहा गया है तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है उन्होंने एक डायरी बनाई थी। तो महाप्रभु की लीला जो है बहुत ही संक्षेप में, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी ऐसा छोटी पॉकेट डायरी थी, तो वो सूत्र रूप में लिख दिया करते थे छोटा छोटा महाप्रभु का जो भी चरित्र था, आचरण था। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसी डायरी बनाई और ऐसा बड़ी डायरी, तो उसका विस्तृत रूप जो था स्वरूप दामोदर गोस्वामी एकदम छोटा छोटा सूत्र रूप में, है ना, ऐसे पॉइंट 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 वाइज छोटा छोटा, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी सुन के उसको विस्तार रूप से एक मोटा डायरी में लिखते रहे। फिर बाद में ये दो डायरी से ही कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चेतावनी लिखी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने डायरी भी लिखी अपनी, वो डायरी के आधारित फिर उन्होंने राधा कुंड में बैठ के प्रतिदिन उन्होंने कई समय तक चैतन्य महाप्रभु की कथा की, प्रहर एक महाप्रभुरा चरित्र कथन। तो 3 घंटा रोज राधा कुंड पे बैठ के रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के लीला और चरित्र का वर्णन करते थे। वहाँ सभी वृंदावन के भक्तों ने उनसे कथा सुनी, और वहीं कविराज गोस्वामी ने भी बैठ के सुनी। तो वहाँ पे कविराज गोस्वामी ने सुनी रघुनाथ दास गोस्वामी से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के निजी पार्षद, उनके डायरी, उसको विस्तार किया रघुनाथ गोस्वामी ने, फिर उन्होंने कथा कही, कविराज गोस्वामी ने सुनी और उसको चैतन्य चरितामृत में लिखा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह से बहुत ही विशेष पार्षद हैं महाप्रभु के, और उनके बारे बताया गया है उनके वैराग्य की तो कोई तुलना ही नहीं है। अन्न जल त्याग कैला अन्य कथन पल दुई तीन मठा करेण भक्षण। वो दो तीन हाथ में जितना हम चनामृत लेना सुबह, अगर हाथ का कटोरा बनाया जाए ऐसा और कोई कहे कि भाई इसमें डाल दीजिए जितना आएगा, है ना, हाथ का ऐसा, तो हाथ में जितना चनामृत आता है ऐसा दो या तीन बार उतना ही दिन में छास पीते थे रघुनाथ दास गोस्वामी बस, और कुछ खाते नहीं थे पीते नहीं थे, जितना हाथ में आ जाता है उतना दो या तीन बार छास ग्रहण करते थे। सहस्र दंडवत करे लय लक्षण नाम, और हजार दंडवत करते थे, राधा कुंड की रोज परिक्रमा करते थे, दंडवती परिक्रमा आपने देखा है, गोवर्धन जाते हैं तो गोवर्धन में कई भक्त लोग दंडवत करके परिक्रमा करते हैं, तो दंडवत करते हुए राधा कुंड की परिक्रमा करते थे 1000 दंडवत प्रतिदिन, और 2000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे, मतलब मानसिक रूप से वाचिक रूप से प्रणाम करते थे, दिन रात जो है भगवान की लीला का स्मरण करते थे, और 3 घंटा रात्रि दिने राधा कृष्ण मानस स्मरण प्रहर एक महाप्रभुरा चरित्र कथन, 3 घंटा महाप्रभु का कथा करते थे राधा कुंड में रहते हुए। तो कबीरराज गोस्वामी कहते हैं 7.5 प्रहर, दिन में 8 प्रहर होते हैं, एक प्रहर जो है 3 घंटे का, दिन में 8 प्रहर 24 घंटा हो गया, 7.5 प्रहर 8 में से कितना घंटा हो गया, 22.5 घंटा, तो 22.5 घंटा उनका भक्ति का स्केड्यूल था, और 1.5 घंटे में वो थोड़ा खा पी लेते थे सो लेते थे बस। तो सर्द सप्त प्रहर करे भक्ति रा साधने, चारी दंड निद्रा से हा नहीं कौन दिने। तो 22.5 घंटे उनका भक्ति का साधन था, 1.5 घंटे में थोड़ा सोते थे, थोड़ा खाने पीने में तो क्या 1-2 मिनट ही लगता होगा, है ना, सिर्फ 2-3 बार छादी लेते थे हाथ से, एक ही बार लेते थे 2-3 सर्विंग जितना हाथ में आ जाए। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी का बहुत श्रेष्ठ जो है उनका वैराग्य और भक्ति है, तो उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे हम भी महाप्रभु के उनके पदचरणों पर चलते हुए अभी महाप्रभु के दृढ़ रूप से भक्ति कर सकें विषय वस्तुओं से अनासक्त होकर के। तो वास्तव में उन्होंने हमको सिखाया है कि इस संसार में जो सबसे अत्यधिक बहुमूल्य वस्तु है वो है भक्ति का धन, महाप्रभु की कृपा का धन, उन्होंने अर्जित किया, बाकी सब कुछ त्याग करके। तो ये है रघुनाथ दास गोस्वामी, और चौथे महाप्रभु के पार्षद जिनका आविर्भाव दिवस है आज वो है रघुनंदन ठाकुर। तो रघुनंदन जो थे वो प्रसिद्ध हैं महाप्रभु के एक मुकुंद सरकार करके भक्त थे, एक महाप्रभु के पार्षद थे मुकुंद दत्त और एक दूसरे पार्षद थे मुकुंद सरकार। तो मुकुंद दत्त थे वो थे बहुत बड़े गायक, मुकुंद सरकार थे वो थे वैद्य थे, उनके पुत्र थे रघुनंदन। तो एक बार जो मुकुंद सरकार थे वो बाहर गए किसी कार्य से, और उन्होंने अपने लड़के को कहा कि आप भगवान को भोग लगा दीजिएगा आज। तो जब उन्होंने उनके घर पे गोपीनाथ के विग्रह थे तो उन्होंने भोग लगाया और कहा कि आप स्वीकार कीजिए, और मंत्र का उच्चारण किया तो उन्होंने देखा रहे तो प्लेट में भगवान ने खाया नहीं कुछ, तो रोने लगे कि गोपीनाथ को कहने लगे आप ग्रहण ही नहीं कर रहे, आप कुछ खा ही नहीं रहे, मेरे पिताजी बोल के गए कि आपको खिला देना लेकिन आप खा ही नहीं रहे। तो वो बहुत जोर से रोने लगे और कहने लगे आप खाइए नहीं तो मेरे पिताजी नाराज होंगे कि मैंने आपको एक कार्य दिया आपने किया नहीं ठीक से। तो अपने पिताजी के आज्ञावश थे और भगवान बोले करे मैंने इसको, भगवान कैसे ग्रहण करते हैं, किसी भी अंग से कर सकते हैं कोई भी कार्य, तो भगवान देख लेते हैं, या भक्त की प्रभुपाद कहते हैं जब भक्त उच्चारण करते हैं ना मंत्र, महामंत्र बोलते हैं हम लोग या अन्य मंत्र बोलते हैं ऑफरिंग के लिए, जब भगवान सुन लेते हैं वो मंत्र तो स्वीकार कर लेते हैं, कानों के द्वारा आंख से देखने के द्वारा भगवान स्वीकार कर लेते हैं, वो खाने के समान ही है, भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, अरे मैंने आपका, आपने जो मेरे को कहा, मैंने आपकी बात सुन के स्वीकार कर ली है, मैंने दृष्टि डाल दी है, प्रसाद हो गया है। वो कहने बोले ऐसे नहीं होता है, दोबारा रोने लगे, अब इसको ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। फिर भगवान ने वास्तविक रूप से पूरा थाली खाली कर दिया, और दोबारा फिर जब उनके पिताजी आए तो विश्वास नहीं कर पाए, तो बोले दोबारा लड्डू भोग लगाइए। तो उन्होंने लड्डू भोग लगाया, तो लड्डू फिर गोपीनाथ ने आधा खाया, तो उनके पिताजी पीछे से चिल्लाने लगे, जोर से आवाज़ किया उन्होंने, गोपीनाथ की जय जयकार करने लगे। तो तुरंत गोपीनाथ ने आधा लड्डू रख दिया, तो आधा लड्डू खाया, आधा लड्डू रख दिया। तो इस तरह से अभी भगवान का विग्रह है जहाँ पे उनका घर है मुकुंद सरकार का, वहाँ पे गोपीनाथ ने आधा लड्डू का महाप्रसाद छोड़ दिया और आधा लड्डू ग्रहण किया। तो ये थे उनके पुत्र रघुनंदन ठाकुर। तो एक बार महाप्रभु मुकुंद दास को पूछते हैं, मुकुंद दास उनके पिताजी हैं, महाप्रभु उनको एक बार सवाल पूछे। क्या सवाल पूछे? वो एक बार बुला के पूछे मुकुंद दास को कि बताइए कि आप उनके पिता हैं या वो आपके पिता हैं। मुकुंद दास रे पूछे सचिरानंदन, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हार श्री रघुनंदन। कहने लगे कि आप पिता हैं और ये पुत्र हैं, या आप पुत्र हैं और वो पिता हैं, बताइए कौन है। है ना, जैसे एक बार एक मैंने लड़के को देखा, एक छोटा लड़का था राधा गोपीनाथ मंदिर में, वो हाथ में उसने पिताजी का मोबाइल लिया और ऐसा एक सेल्फी निकालने लगा वृंदावन फॉरेस्ट के बैकग्राउंड में, और सेल्फी निकाल के कुछ तो करने लगा। तो मैंने बोले क्या कर रहा है, बोले ये अपनी फेसबुक पे अपलोड कर रहा है। ऐसा 5-6 साल का लड़का था, तो वो सेल्फी निकाल के फेसबुक पे अपलोड कर रहा है। मैंने बोला अरे बहुत स्मार्ट आपका बेटा है, पुत्र है। बोले पुत्र नहीं, मेरा बाप है ये। बोले मेरे को नहीं आता है, इसको सब आता है। तो देखा गया बहुत बार जो है छोटे बच्चे हैं वो पुत्र नहीं, वो पिता से भी आगे बढ़ के होते हैं, ऐसा देखा गया है संसार में भी। तो ऐसा ही महाप्रभु कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि ये आपके पिता हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पुत्र हैं या आपके पिता हैं। तो मुकुंद क्या कहते हैं, उनके जो पिता कहते हैं, वो कहते हैं वास्तव में ये मेरे पिता हैं, ये मेरा बाप है, ये बच्चा नहीं है ये। वास्तव में उनकी भक्ति बहुत उत्कृष्ट थी, ये अभी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं ना। भक्ति के स्तर में जो रघुनंदन थे बहुत उत्कृष्ट थे, तो इसलिए मुकुंद दास ने जो है उस समय उनके पिताजी कहने लगे ये मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। और ये बात जब चैतन्य महाप्रभु ने सुनी, ये उत्तर सुना, तो बहुत प्रसन्न हो गए। सुनी हर्षे कहे प्रभु कही ले निश्चय, बोले आपने बहुत एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। आप पिता को कह रहे हैं कि आप पुत्र हैं और ये आपके पिता हैं, क्यों? यहाँ है ते कृष्णा भक्ति से गुरु है। पिता जो है वो गुरु भी होते हैं, लेकिन जिनसे हमको कृष्णा भक्ति मिलती है वो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनकी भक्ति की महिमा बताई कि आपके जो पुत्र हैं वो आपसे भी अत्यधिक उनकी भक्ति है। गोपीनाथ ने उनके हाथ से भोग स्वीकार किया है, पूरा प्लेट खाली किया, बाद में लड्डू भी खाया, तो उनकी भक्ति बहुत उत्कृष्ट है। वास्तव में वो आपके पिता हैं, आप उनके पुत्र हैं। तो इस तरह से ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि भक्ति में कौन छोटा है कौन बड़ा है। वास्तव में जिसकी भक्ति बड़ी है वो पिता है, वो गुरु हैं, वो बड़े हैं। तो इस तरह से बताया गया है कि भक्तों की महिमा बढ़ाने में महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत रुचि है उनकी। तो अपने श्रीमुख से उन्होंने रघुनंदन की भक्ति की स्तुति की है, तो उनका भी जो है आज आविर्भाव दिवस है। और अंत में श्रीला विश्वनाथ चौधरी ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो मैंने जैसे बताया शुरू में, आज 5 वैष्णवाचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव दिवस है। सबसे पहले हमने विष्णुप्रिया देवी और पुंडरीक विद्यानिधि, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनंदन ठाकुर, इन चारों का आविर्भाव है। और विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर जिनकी समाधि यहाँ पे है, हम बैठे हुए हैं, और बहुत सुंदर आज डेकोरेशन की है उनकी समाधि की, उनका भी जो है आज तिरुभाव दिवस है, बाकी चारों का आविर्भाव दिवस है। आविर्भाव मतलब उनका अपीरन से आज के दिन जन्मदिन जिसको बोलते हैं, और उनका आज के दिन तिरुभाव, उदय होना और अस्त होना। तो संक्षेप में मैं विश्वनाथ गिरी ठाकुर के बारे कुछ कहूँगा। तो हमारे हाँ यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में लोकनाथ गोस्वामी है। तो महाप्रभु के डायरेक्ट जो शिष्य हैं लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के पार्षद हैं, निजी पार्षद हैं। उनके शिष्य कौन? नरोत्तम दास ठाकुर, इधर ये व्हाइट मार्बल का समाधि है, नरोत्तम दास ठाकुर ये उनके एकमात्र शिष्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए लोकनाथ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर के एक शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, उनकी समाधि यहाँ है, ये उनके शिष्य, ये परंपरा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती, गंगा नारायण चक्रवर्ती के एक छोटे बच्चे थे, एक पड़ोस में रहते थे, उनसे बहुत असक्त हो गए। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती की कोई संतान नहीं थी, एक बेटी थी, कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने कृष्ण चरण चक्रवर्ती को अपने पुत्र मान लिया था, एक छोटा बच्चा जो बचपन से उनसे असक्त हो गया था, और उन्होंने उनसे उनके दीक्षा भी ले ली थी। उसका नाम था कृष्ण चरण चक्रवर्ती। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जो है वो उन्होंने प्रायः शिक्षा ली कृष्णचरण चक्रवर्ती से। गंगानारायण चक्रवर्ती के जो शिष्य हैं कृष्णचरण चक्रवर्ती, उनसे शिक्षा ली और उनसे भक्ति का जो है ये ग्रहण किया, भक्ति का भाव। परंतु वो बहुत वृद्ध हो गए थे कृष्णचरण चक्रवर्ती, तो उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य से आप दीक्षा लीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जिनसे दीक्षा ली वो थे राधारमन चक्रवर्ती। तो लाइन थोड़ा बड़ी हो गई है। तो लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, उनके शिष्य यहाँ पे गंगा नारायण चक्रवर्ती, और गंगा नारायण चक्रवर्ती के शिष्य के शिष्य के शिष्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती के शिष्य थे कृष्णचरण चक्रवर्ती, उनके शिष्य थे राधारमन चक्रवर्ती, उनके शिष्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती। तो ऐसा ये गुरु परंपरा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जो हैं उनके बारे कहा गया है कि विश्वनाथ, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को भक्ति का मार्ग दिखाया। जब ये पूरा विश्व अंधकार में छा गया, बताया गया है जिस समय वो आए 17वीं सदी में, जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वृंदावन आगमन हुआ, उस समय सब अपसंप्रदाय से जो शुद्ध भक्ति है वो ढक गई थी। लेकिन उन्होंने दोबारा इस भक्ति को उदय किया है, तो इसलिए वो विश्व के नाथ है। दोबारा उन्होंने शुद्ध भक्ति को दर्शन दिया है सबको विश्वनाथ, तो इसलिए उनका नाम विश्वनाथ। भक्तों के चक्र में वो सबसे श्रेष्ठ हैं, तो चक्रवर्ती। तो 17वीं सदी में जितने भी महाप्रभु के भक्त हुए हैं उनमें से सबसे अवर्तित्वात जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो है विश्वनाथ। तो क्योंकि विश्व को उन्होंने भक्ति का मार्ग दर्शाया, भक्ति का मार्ग जैसे सूर्य के समान है, अंधकार विश्व में छा गया था, तो उनका नाम विश्वनाथ। और चक्रवर्ती भक्तों के चक्र में जो श्रेष्ठ है, तो वो हो गया विश्वनाथ चक्रवर्ती। तो उनका देवग्राम नामक, नदिया डिस्ट्रिक्ट में देवग्राम नामक जगह है, वहां पे उनका जो है आविर्भाव हुआ। उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और काव्य की शिक्षा ग्रहण की, और अपने गुरु की आज्ञा से वो आकर के राधा कुंड में रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती। उन्होंने जो षड गोस्वामी के लिखित ग्रंथ हैं वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के एक शिष्य थे मुकुंद, उनसे उन्होंने राधा कुंड में रह के शिक्षा ग्रहण की सीख है। तो कविराज गोस्वामी के जो एक शिष्य थे मुकुंद, उन्होंने विश्वनाथ गिरी ठाकुर को गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं उनके बारे शिक्षा दी। तो वो ग्रंथ सब पढ़ करके दोबारा वापिस आ गए नदिया डिस्ट्रिक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और कहा गया है कि जब वो वापस आ गए अपने गुरु के आश्रम में रहने लगे, कृष्णचरण चक्रवर्ती और राधारमन चक्रवर्ती दोनों के गुरु थे वहां पे रहने लगे, तो जो वो बहुत युवा अवस्था जब बच्चे ही थे 8-10 साल के थे, तो उनकी शादी कर दी गई थी। तो ये तो बिल्कुल भूल गए थे कि उनकी शादी हुई है, लेकिन माता पिता तो नहीं भूले थे जिन्होंने शादी की है। उनके गुरु के आश्रम में आ गए, बोले भाई अभी ये बड़े हो गए हैं, इनको भेजिए, अपने गृहस्थ आश्रम की जिम्मेवारी संभालेंगे। तो बहुत उन्होंने आग्रह किया, तो उनके गुरु ने कहा जाइए भाई, आप जाइए, थोड़ा अपने वाइफ के साथ भी थोड़ा समय बिताइए, आश्रम में समय बहुत बिता दिया आपने। तो चले गए वो अपने गुरु की आज्ञा मान के, तो वाइफ के साथ रुके रात को, और रात भर उन्होंने अपनी पत्नी को भागवत कथा सुनाई। पूरा रात वो भागवत पे कथा करते रहे, तो उनको तो नींद आ गई, इनको नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि रात भर ये जो है मेरे को कथा सुनाते रहे, बहुत बोर किया। तो उन्होंने पेरेंट्स से कहा हमारा आशीर्वाद है, आप जाइए गुरु के आश्रम में, वापस जाइए। तो जो भी उनको आग्रह किया था उन्होंने अभी पूर्ण रूप से आशीर्वाद देके उनको, तो बस एक ही रात वो जो है अपनी पत्नी के साथ रहे, वो भी उन्होंने भागवत कथा की। तो वही उनका गृहस्थ आश्रम था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उनका गृहस्थ जीवन इतना ही था। तो फिर वो दोबारा आ गए, अब गुरु ने फिर उनको कहा कि आप मेरे लिए एक भागवत लिख दीजिए हाथ से, सेवा दी। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो हाथ से भागवत लिखने की सेवा दी। तो कहा गया वो भागवत लिखते लिखते जब लिख रहे थे, उनका अर्थ भी उनको समझ में आ रहा था, इतना जो है वो उनका भक्ति का भाव बढ़ जाता था कि पूरा धूप में बैठे हैं उनको पता ही नहीं चलता कि बहुत कड़क धूप है। तो जहां वो बैठते थे वहां छांव हो जाती थी, ऐसा भगवान का अरेंजमेंट था। अच्छा, एक बार बहुत बारिश आ रही थी, उनको पता ही नहीं चला कि बारिश शुरू हो गई, वो भागवत लिख रहे थे हाथ से, लेकिन जहां चारों तरफ बारिश हो रही है उनके ऊपर जो है बिल्कुल एक कण भी नहीं पड़ रही। तो एक राजा ने, जब देवग्राम के जो उधर से राजा गुजर रहे थे, उन्होंने देखा दूर से कि ये भागवत में इतना ये डूबे हुए हैं, नहीं तो इनको गर्मी से कुछ प्रभाव है, नहीं तो वर्षा से प्रभाव है। तो ये जब उन्होंने देखा तो उनको तुरंत उतर के, राजा जब जा रहे थे अपनी पालकी से उतर गए, को दंडवत किया, उनकी शरण ली। तो बहुत विशेष महाप्रभु के भक्त हुए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, भागवत पे टीका लिखा है, भगवद गीता पे टीका लिखा है, चैतन्यचरितामृत पे भी टीका लिखा है, लेकिन वो अभी वो जो है उनका अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे चला गया वो पता नहीं। तो उन्होंने कमेंट्री जो है बहुत सी किताबों पे कमेंट्री भी लिखी है और अपना ओरिजिनल किताबें भी लिखा है। तो उन्होंने 18 बुक्स लिखे हैं और 14 कमेंट्री लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो इस तरह से भक्ति के मार्ग में, तो दोबारा वो आकर के, जैसे मैंने बताया पहले राधा कुंड में थे, फिर चले गए गुरु के आश्रम में, दोबारा गुरु के आशीर्वाद से आकर के वो फिर वृंदावन में रहे, गोवर्धन में रहे, यावट में रहे और राधा कुंड में। तो वृंदावन में चार जगह पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहे हैं, और फिर वहीं से उनका तिरुभाव हुआ और वहाँ पे वृंदावन राधा गोकुलानंद मंदिर में उनकी समाधि है। और भगवान भी स्वयं अपनी इच्छा से आए, जब वो गोवर्धन में थे तो एक ब्रह्मचारी वहाँ पे आकर के उनको, उन्होंने भगवान के विग्रह दिए, कहने लगे कि ये मैं विग्रह की सेवा कर रहा था बहुत देर से, भगवान ने स्वयं मुझे कहा कि आप इनको स्वीकार कीजिए। और पहले तो हिचकिचाए, फिर भगवान ने स्वयं उनके सपने में आके कहा कि आप मुझे स्वीकार कीजिए, आप जो भी सेवा कर पाएंगे मैं प्रसन्नता से स्वीकार करूँगा। तो राधा गोकुलानंद भी जो है स्वयं ही अपनी इच्छा से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास आए, राधा गोकुलानंद। आज हम राधा गोकुलानंद मंदिर में बैठे हैं। गोकुलानंद का क्या अर्थ है? जो गाय, गोकुल, जो गाय को आनंद दे भगवान, और जो गोकुल के निवासियों को आनंद दे, मतलब जो भी वृंदावन गोकुल में भगवान के भक्त हैं उनको आनंद दे, राधा गोकुलानंद। राधा गोकुलानंद मंदिर बाद में उसकी स्थापना हुई, पर वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहे हैं, वहीं पे उनकी समाधि है, और आज हम उसी मंदिर के आंगन में बैठे हैं। ये जगह भी वृंदावन धाम से अभिन्न है। तो जहाँ पे भगवान के भक्तों का स्मरण होता है, श्रवण कीर्तन होता है, वहाँ पे वही विशेष कृपा हमको प्राप्त हो जाती है जो ओरिजिनल जगह पे प्राप्त होती है। तो आज का दिन जो है बहुत विशेष है, हम दोबारा इस पवित्र स्थान पे हृदय से, भक्ति भावना से इन सभी वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं कि हमें उनकी कृपा याचना प्राप्त हो और हमारा जीवन भी उनकी कृपा से और भक्ति से परिपूर्ण हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो श्लोक शुरू में उच्चारण किए थे उसका अंत में उच्चारण करेंगे, ठीक है, एक साथ में।
जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान।
ऊंचे स्वर में
जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान। जय गौर भक्त गण गौर यार प्राण, सब भक्त मिली मोरे भक्ति देहो दान।
जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की, जय श्री विष्णु प्रिया देवी की, जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, जय श्री पुंडरीक विद्यानिधि की, जय श्री रघुनंदन ठाकुर की, जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जय अनिलो प्रेमधन गाएंगे और उसके उपरांत पुष्पांजलि।
हम लोग दामोदर प्रभु को 3 बार हरिबोल करके थैंक्स करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से हम लोग को कथा मिली है। सो 3 बार हरिबोल करके हरिबोल हरिबोल हरिबोल।
जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। जय अनिल प्रेमदान करुणा प्रचुर, हे न प्रभु गेला आचार्य ठाकुर अनिल प्रेम प्रचुर प्रभु कथा केला आचार्यता को कबीरा। एको काले को था केला तोरा न तोरा असने को तीवा माथा अनले पसीबा कौरांगे गुने सब संगीरा संगे जे कोई विलास से संग ना भाईया कंदे तमदास जे अनिल प्रेम घना करुणा प्रसू Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
पुष्पांजलि करेंगे तो ये फ्लावर्स आपको बांट दिए जाएंगे। तो जब ये आरती हो रही है तो एक एक करके चक्रवर्ती पाद जी को फ्लावर ऑफर करके वहां पे टेबल पे रख सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। सब लोग खड़े हो जाइए, आरती होगा। संसारदावानललीडलोका त्रणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणान्वस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्द प्राप्तस्य महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यान मनसो रसेना मां
चकंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदा श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तां शनयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दा चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त सङ्गा कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दा श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दा कुञ्जयो नो रतिकेलि सिद्धै यायालि भेयो तिरपेक्षणीया दाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दा साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा वा यत एव सद्भि उक्तस्तथा भावित किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्द यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवांस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दा वंदे गुरु श्री चरणारविंद वंदे गुरु श्री चरणारविंद वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Oh, जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল
শিল বৈষ্ণব চক্রি ঠাকুর পাদ কি শিল প্রভুপাদ কি অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে